भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदलाल नंद गोपकुमाराय गोविंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनाबंधु जगत पिते गोपेश गोपी कांता राधा तप्ता कंचन गोरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषवानो सुति देवी। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्वसति गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। प्रश्न पूछिए।
हरे कृष्णा बापूजी, जहाँ पे कल सत्संग स्टॉप हुई थी वही कंटिन्यू करें जो आपने कहा था कि कल बताऊंगा कि बुरे विचार मन से कैसे निकालें।
अच्छा सही बात है। अब पहली बात तो ये है कि बुरे विचार या ईर्ष्या द्वेष के विचार हमारे मन में बैठे क्यों, पहले तो इसकी जड़ सोचे ना। तो पहली बात ये सोचो कि जो हमारे मन में बुरे विचार नेगेटिव या ईर्ष्या द्वेष के जो विचार थे वो बैठे क्यों। बैठे हैं तो निकलेंगे। तो जो भी हमारे मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष जेलेसी नकारात्मक जो विचार बैठे हैं उसका एक ही कारण है, हमारा ईगो। क्योंकि जो ईगो है वो कांच से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जैसे ही ईगो हर्ट होता है तो जिस बात से हमारा ईगो हर्ट हुआ होता है वो बात हमारे दिल में बढ़ जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। पहली बात। फिर ईगो ही क्या करवाता है, जेलेसी। क्योंकि याद रखना आपका ईगो आपको ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करता है। क्योंकि जिसके प्रति हम प्यार करते हैं वो कभी बुरा बोल भी देगा तो हमारे मन में नहीं बैठेगा, थोड़ी देर में हम भूल जाएंगे। चूंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बात को हम कभी भी दिल में नहीं रखते, लेकिन जिससे हमें जेलिसी है और जो हमारी ईगो को ठेस पहुंचा रहा है वो बात हम कभी भी नहीं भूले। हम कहते नहीं, इसने ये कैसी बात बोली कि मेरे तन मन में आग लग गई। ये जो तन मन में आग लगी लगाई किसने, बात ने नहीं लगाई बल्कि ईगो ने लगाई। तो ईगोस्टिक लोग जो अहंकारी लोग हैं एक, दूसरे ईर्ष्यालु लोग, तीसरे द्वेषी लोग। तो तीन तरह के इस दुनिया में लोग हैं, समझिए। अब एक है जो पत्थर पे लकीर है, आप पत्थर पर एक बार लकीर कर लो वो कभी भी नहीं मिटेगी। दूसरी है रेत पर लकीर और तीसरी है पानी पर लकीर। तो जो सात्विक लोग हैं, सतगुणी लोग हैं, उनके मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। कल जैसे मैंने कहा था कि हर एक समस्या का समाधान आखिर एक जगह पे आके रुक जाता है, और वो एक जगह क्या है, माफी मांग ले और माफ कर दे। लेकिन अगर एक इंसान माफी मांग लेता है और दूसरा माफ न करे तो भी समस्या का समाधान नहीं, और एक इंसान माफ कर दे लेकिन अगला माफी ना मांगे, और एक इंसान माफी मांग ले और अगला माफ न करे तो समस्या का समाधान नहीं आने वाला। समस्या के समाधान के लिए एक माफी मांगे तो दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और याद रखना, माफी देते समय और माफी मांगते समय अगर आपने कोई कंडीशन रखी है तो भी वो ज्यादा दिन तक मामला चलने वाला नहीं है, अनकंडीशनल। अब हमारे ईगो को हर्ट हुआ और वो बात हमारे मन में बैठ गई, वो भूली नहीं जाती है। इसलिए किसी भी बात को मन में निकालने से पहले हमें ईगो को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईगो क्या करता है, हमेशा बेड मेमोरीज क्रिएट करता है। और जो डाउन टू अर्थ है हमेशा गुड मेमोरीज क्रिएट करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि तरोरपि अमानि न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। क्योंकि हम सत्संग के संबंधी लोग हैं तो इतना याद रखना कि हमारी पब्लिक लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, ये तीन तरह की हम लोगों की लाइफ है, पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। एक बात याद रखो कि आपकी पब्लिक लाइफ से या आपकी पर्सनल लाइफ से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जहां आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, फिर आपने पब्लिक लाइफ से कितना भी कमाया फिर भी समझ लेना सबसे बड़ा नुकसान आपने किया। समझ लो एक दिन में आपने 1,00,000 रुपया कमाया लेकिन उस दिन आपकी माला नहीं हुई। समझ लो एक दिन में आपने 1,00,000 रुपया कमाया लेकिन उस दिन आपने सत्संग नहीं सुनी। समझ लो एक दिन में आपने 1,00,000 कमाया और वृंदावन चंद्र के दर्शन छोड़ दिए, कथा कीर्तन छोड़ दिया, तो पब्लिक लाइफ में तो आप सफल रहे लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपका डैमेज हुआ वो पब्लिक और पर्सनल लाइफ से भरपाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती क्योंकि जैसे एक उदाहरण दूं, मैं फिर कहता हूं, हम विदेश में हैं, हमारे पास $5,000 है, कपड़ों से सूटकेस भरा पड़ा है और हमारा पासपोर्ट है। अब आपने देखा, अरे डॉलर, बोला हाँ डॉलर है, वाह 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 डॉलर है ना, कपड़े बोला वो भी है, लेकिन पासपोर्ट खो गया। अब वो $5,000 से भी आप पासपोर्ट की भरपाई नहीं कर सकते, या कपड़े के सूट केस से भी आप अपने पासपोर्ट की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट की जगह ना $5,000 ले पाएंगे ना कपड़े का सूट केस ले पाएंगे। $5,000 से आप खर्चा कर पाओगे, सूट केस से कपड़े आप पहन पाओगे, लेकिन पासपोर्ट से तो आप अपने घर वापस जा पाओगे। इसी तरह से आपकी पब्लिक लाइफ में आपने कितने भी कमाए, फिर भी कम आए। पब्लिक लाइफ से कितने भी कमाए लेकिन कमाए, पहली बात। तो जो आपका भजन डिस्टर्ब हुआ, जो आपके दर्शन डिस्टर्ब हुए, जो आपकी सत्संग डिस्टर्ब हुई, उसकी भरपाई वो 1,00,000 की कमाई नहीं कर सकता है। क्योंकि याद रखना, जो दिन गया वो गया, जो दिन गया वो गया। अब वो नहीं आएगा, तो उस दिन में आपके नाम के आगे क्या लिख दिया, एब्सेंट। मतलब आपका भजन, आपका कीर्तन, आपके दर्शन, आपकी सत्संग का क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। भले ही संसार में आपने कहीं भी हाजिरी लगाई हो, जिस तरह से उदाहरण दूं, हमारे स्कूल के कैंपस में या हम कहीं जॉब करते हैं, हमारे ऑफिस के कैंपस में कैंटीन भी होता है और यूटिलिटी बड़े में होता है। आप सब जगह गए, कैंटीन में भी गए, यूटिलिटी स्टोर में भी गए, वेयर हाउस में भी गए, लेकिन ऑफिस में नहीं गए। तो आप अपने बॉस को नहीं कह सकते मैं आया तो था, कहां थे, जहां आना था उस दिन तुम वहां नहीं आए, तुम्हारी एब्सेंट लग गई। और मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के सबसे कीमती दिन है जो जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं समझो, एक तो हम तंदुरुस्त हैं, आने वाले दिनों में हम तंदुरुस्त रहे ना रहे, हेल्दी रहे ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हमारे कान सलामत सुन सकते हैं, हाथ सलामत जप कर सकते हैं, आने वाले कल में क्या हो कुछ नहीं जानते हैं। और फिर जब ऐसी बातें हो तो हम ऐसे कहते हैं कि दुनिया वालों को भी मुंह देना है ना, तो अब सोचो कि मैं आपको मुंह दूं तो मेरी पीठ कहां होगी, वृंदावन चंद्र की तरफ। तो जब हम दुनिया को मुंह देते हैं तो हमारी पीठ भगवान को देते हैं। और याद रखना, ये दुनिया ऐसी है कि जिसको मुंह दोगे वो मुंह नोचेंगे, इसलिए दुनिया को मुंह दो ना दो, राधा वृंदावन चंद्र को मुंह जरूर दो, क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र आपका मुंह नोचेगा नहीं, आपका मुंह चाटेगा, क्योंकि वो हमारे मात पिता है, हमारे वेल विशर है। और अंत में जाना उसी के पास, इसलिए ये होना चाहिए हमारा डेडिकेशन, डेडिकेशन होना चाहिए। अब मेरा गला खराब है सबको पता है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं खराब है। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया मैं सत्संग से छुट्टी कर जाऊंगा, और ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि श्रेष्ठुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरी, जो कल बात चल रही थी, कि जो चीज सदा करोगे वो आखिर तो मन में घर कर ही जाएगी। दूसरी बात आपको बताऊं भी ये विचार निकले कैसे, तो उसलिए सिंपल एक साइंटिफिक मेथड समझा रहा हूं। एक आपने कांच का शीशे का गिलास लिया और उसमें गंदा पानी भर दिया तो पानी कैसा है? फिर आप उसको नल के नीचे रख दो। आज एक्सपेरिमेंट करना क्या होगा, धीरे धीरे गंदा पानी निकलता जाएगा और उसकी जगह साफ पानी ले लिया और एक वक्त आएगा वो पानी पीने के लायक बन जाएगा। ऐसे ही हमारे मन के जो ये विचार है, सत्संग सुनते सुनते सुनते, क्योंकि सत्संग में देखो बहुत सारी चीजें होती है, सत्संग में कभी इनडायरेक्टली डांटा भी जाता है, सत्संग में कभी आदमी पे उसके ईगो को हर्ट भी किया जाता है ताकि उसका ईगो टूटे। एक संत का एक बहुत प्रिय शिष्य था और उस संत ने उसको हजारों लोगों के बीच में डांट दिया, हजारों लोगों के बीच में डांट दिया। तब एक दूसरे ने कहा कि ये आपका इतना प्रिय शिष्य लोगों के सामने डांट दिया। बोला प्रिय है तभी तो लोगों के सामने डांटा, ताकि इसके अगर थोड़ा बहुत ईगो है वो भी टूट जाए, उसको उसकी हैसियत का पता रहे कि मैं दास हूं, मैं दास। इसलिए तृणाद अपि सुनिचेन तरोर अपि शेषतुना अमानी न मान देना। तो कभी डांटा जाता है इनडायरेक्टली, कभी हमारी ईगो को तोड़ा जाता है, कभी हमारी भ्रांतियों को दूर किया जाता है, कहीं हमारी खुशफहमी होती है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत सारी जो बीमारियां हमारे मन में आ जाती है, विकृतियां, उसको निकाल के सत्संग के सदविचार आते आते एक वक्त आता है कि हमारे मन से वो विचार टोटली निकल जाते। जैसे एक उदाहरण दो, हमें कोई हमारा कोई बड़ा है, हमारा कोई बड़ा है जिसका हम बहुत मर्यादा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो कहे कि सुनो ये ख्याल तो तुम दिल से निकाल ही दो, क्या करेगा? निकालना पड़ेगा। हम कहते मुझे दुबई जाना है दुबई, तब वो कहता ये दुबई जाने का ख्याल निकाल दो, तो हम सारी जिद छोड़ देते। जिद छोड़ी मतलब विचार दिल से निकल दिया, तभी तो जिद छोड़ी, क्योंकि जब तक विचार थे हम जिद कर रहे थे। फिर अंत में कहते कि मुझे बापू ने बोला इसलिए मैंने तो वो विचार ही दिल से निकाल दिया। होता है तो ये जो संसार के विचार है, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, जेलेसी, ये कालिदास की तरह है। आपको कालिदास के जीवन का कुछ पता है? कौन बताएगा? कालिदास एक स्पर्धा हुई और बोला जो हमारे शहर का देश का सबसे मूर्ख आदमी है उसको लाया जाए। ये एक लंबी कथा है। अब मूर्ख ढूंढे किधर? तब देखा कि कालिदास जिस टहनी में बैठे थे पहले उसी को काट रहे थे। बोला इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, इसी को पकड़ो। बाद में वो हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा कवि बन गया। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं पता है, बहुत बड़ा कवि बन गया। और उसको कवि बनाने में किसका हाथ था? उस लड़की का, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी और उसको अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार था, तब उनको नीचा दिखाने के लिए सबसे मूर्ख से उसकी शादी कराई। अब मूर्ख और ज्ञानी आपस में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, आपस में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। लेकिन उन्होंने उसको कालिदास बना दिया। लेकिन क्या था कि कालिदास ने भी इस बात को सीरियस लिया कि मुझे बन के दिखाना। इसलिए हमारे मन में ये जो विचार है, ये सतत हम सत्संग हरि कथा कीर्तन सुनते सुनते वो विचार बैठते हैं और जो फालतू के विचार है वो निकल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, पहले 10:30 बजे आपको कहीं जाने के विचार आते होंगे, आज से 10-12-15 साल पहले, लेकिन अब वो विचार निकल ही गए, आते ही नहीं है कि कहीं कहीं जाना है, भूल गई कहीं आना है, भूल गए, क्योंकि ये सत्संग का विचार बैठ गया कि जाना है। तो ऐसे हरि कथा कीर्तन को यदि हमने सीरियस ले लिया तो वो विचार हमारे मन में बैठ जाएंगे और फालतू विचार मन से निकल जाए। जी और कोई?
आपके बापू जी, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करना।
देखो एक बात बताओ, शास्त्र के अनुसार कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण का धाम, कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का फोटो, कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्रसाद और कृष्ण, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए कोई एक चीज पालो तो समझ लो सभी आ गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त होंगे, मतलब कृष्ण को ही प्राप्त हो, इसका ये मतलब नहीं आप कृष्ण बन जाओगे या कृष्ण जैसे बन जाओगे। जी और कोई क्वेश्चन?
हरे कृष्णा बाबू जी, थोड़ा सिली क्वेश्चन है लेकिन कृष्ण कहते हैं नहम वस्यामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, जहाँ मेरे भक्त मिलकर मेरा भजन करते हैं मैं वही हूँ। और आप वो भी एक बताते हैं, मेरा मन
पंछी
भया उड़ी गया आकाश, वैकुंठ तो खाली भया हरी भक्त। तो वैकुंठ और भक्तों को अलग अलग क्यों रखा है? वैकुंठ में भक्त नहीं होते हैं भजन करने के लिए?
देखो एक बात बताऊं, जब हनुमान जी महाराज को ढूंढा, जब साकेत जा रहे थे प्रभु राम, तब हनुमान जी को ढूंढा कि भाई उनके बिना हम कैसे जाएं, ढूंढ के लाओ। अब ढूंढ रहे ढूंढ रहे, हनुमान जी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो पता चला कि एक जगह भगवान श्री राम की लीला की कथा चल रही थी, हनुमान जी वहां बैठे थे। तो हनुमान जी से कहा चलो, कहां जाना है? साकेत वैकुंठ जाना है, चलो। तब हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं आना। क्यों? बोला वहां मैं साकेत में जाऊंगा तो क्या होगा, वहां तो सेवा होगी, दर्शन होंगे, लेकिन ये हरि कथा थोड़ी होगी। मुझे हरि भी नहीं चाहिए, मुझे हरि कथा चाहिए, मुझे हरि भी नहीं चाहिए, मुझे हरि कथा चाहिए। और मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, एक दिन मुरारी बापू विनोद में कह रहे थे कि अगर भगवान के पास चले गए भी तो उसके पास रह के करोगे क्या, ज्यादा दिन उसके साथ रह नहीं पाओगे। और ये सच बात है, बहुत बड़े के साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बोला फिर भक्तों के साथ रखो जो बहुत सरल है। इसलिए हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं जाना भाई भगवान के गोलोक में, मुझे तो भक्तों के साथ। एग्जैक्ट ये बात महाप्रभु ने कही, ना जन्म ना धनम ना सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामिया, तो मम जन्मनी जन्मनी जन्मे। भवतार भक्ति अहितुकित होई। ए प्रभु ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे 10 जन्म दे दो, लेकिन आपकी अहितुकी भक्ति चाहिए। तो वो अहितुकी भक्ति तो यहीं हो सकती, धरती पे हो सकती। इसलिए महापुरुष भगवान के धाम में जो हाईएस्ट को लिखते हैं, अब आप लोग ये नहीं सोचना, जो ऊंच कोटि के हैं वो कहते प्रभु हमें आपके साथ नहीं रहना है, आपके भक्तों के साथ रहना है। क्योंकि कौन से पुराण में लिखा है? विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है एक है? उसमें लिखा है कि मेरे भक्त वो नहीं जो मेरी भक्ति करते, मेरे भक्त वो है जो मेरे भक्त के भक्त है। तो ये सब सत्संग हरि कथा कीर्तन इस धरती पे मिलती है, इसलिए भक्त लोग यहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना सोचना, आप लोगों तो अच्छा भजन करो और छुट्टी कर जाओ, जाओ अपने घर जी। और कुछ
बापू जी, राधा रानी के चरण दर्शन राधाष्टमी पे क्यों होते हैं?
देखो ऐसा कोई नियम नहीं है राधाष्टमी के दिन ही हो, बल्कि राधाष्टमी निकुंज में तो राधा रानी के चरण दर्शन रोज ही होते हैं, फिर वृंदावन की लीलाओं में तो राधा रानी के चरण दर्शन सारी सखियों को, यहां तक के ठाकुर को भी होते थे। लेकिन यहां एक ऐसी मर्यादा है और उस मर्यादा के कारण राधा रानी के चरण दर्शन सिर्फ राधा अष्टमी को ही होते हैं, क्योंकि उस दिन ये चरण इस संसार में प्रकट हुए थे। क्योंकि राधा रानी प्रकट हुई तो चरण भी उनके साथ ही थे, तो इस दिन राधा रानी के चरण इस धरती पे प्रकट हुए हैं, इसलिए उस दिन चरण दर्शन होते हैं, नहीं तो ऐसी खास नहीं। अब पुजारी तो रोज ही, अब ललिता तो रोज ही चरण दर्शन करती, केशवदास करता है, रामानंद प्रभु जो भी अंदर जाते हैं वो तो रोज ही चरण दर्शन करते हैं। लेकिन सबके लिए, जनसाधारण के लिए एक दिन विशेष होता है राधाष्टमी का, क्योंकि उस दिन राधा रानी के चरण अर्थात राधा रानी स्वयं इस संसार में प्रकट हुई है। लेकिन आप चाहो तो रोज भी राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, और इन दिनों तो हमारी राधा रानी के चरण दर्शन के चित्र फोटो आराम से मिल जाएंगे आश्रम में। आप वो फोटो के द्वारा रोज ही राधा रानी के चरण दर्शन करो, बस ये है। एक सही बात बताऊं, पागलपन होना चाहिए इसके, पागलपन। अब देखो मेरे पास सत्संग ना करने का बहाना है या नहीं बताओ, है कि नहीं? और जीनियन है, मैं जब आईसीयू में था तो सत्संग ना करने का बहाना था कि नहीं था? और जीनियन था। लेकिन ये विषय आपका और मेरा नहीं है, ये विषय मेरा और उसका है। आपको मुझे जवाब नहीं देना, मुझे जवाब उसको देना कि मैं उसकी ये सेवा कितनी सिंसियरिटी से कर रहा हूं। ये जवाब मालिक को देना, आपको क्या दूंगा? आपको तो कहूंगा मेरी तबीयत खराब है, तो आप उल्टा के क्या बोलोगे? आराम करो बापू, आराम करो। आप यही बोलो, ये एक पागलपन होना चाहिए। लेकिन हमारा पागलपन लोगों के पीछे, भगवान के पीछे नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे? ये पता चलता है समय पे, कि हमारे सामने एक और वृंदावन चंद्र है और एक और कोई इंसान है, और हम ऑप्शन किसका लेते हैं, उस इंसान का या वृंदावन चंद्र का? अगर हमने ऑप्शन उस इंसान का लिया तो इंसान कब तक हमसे खुश होगा? पता है लोग हमसे कब तक खुश होते हैं? जब तक हम उनके अनुकूल हैं। आप किसी के अनुकूल हो जाए वो आपसे खुश रहेगा। जब तक किसी को आप साई साई करते रहोगे वो आपसे खुश है। जब तक उसको आप खिलाते पिलाते रहोगे, मान सम्मान दोगे, प्यार की बाल्टियां नौछावर करोगे, तब तक वो आपसे खुश है। लेकिन जिस दिन आपने अनुकूलता छोड़ दी, जिस दिन आपकी जेब से पैसा चला गया और दुनिया में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं रहने वाला। क्योंकि आज ही मैं सुबह किसी से बात कर रहा था कि भाई सीट को सलाम है। किसको सलाम है? किसको सलाम है? सीट को सलाम है। नहीं तो इंसान तो सब एक ही जैसे, सबके पांव है, सबके हाथ है, सबके कान है, सबके नाक है, लेकिन सलाम किसको होता है? सीट को होता है सलाम। जिस दिन वो सीट से उतर गया तो कोई राम राम करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उसके नाम के आगे लग चुका होगा भूतपूर्व, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व गवर्नमेंट ऑफिसर। तो भूत तो सही है, क्योंकि सभी एक दिन भूत होने वाले हैं। भविष्य तो किसका है? वो हरि जाने। इसलिए अपने वर्तमान में मेरे राधा वृंदावन चंद्र के साथ अच्छे से दोस्ती करके रखो। हम दूसरों से निभाते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे, लेकिन आपको क्या पता कि उनको अच्छा भी लग रहा है। इसलिए अगर आप वाकई किसी के साथ अच्छे से रहना चाहते हो तो वो एक ही राधा वृंदावन चंद्र। बाकी तो सब है, आने जाने वाले लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, ये जरा सोच लेना जी। और कोई प्रश्न? अब तीन तीन हाथ उठे हैं।
आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी, जैसे हम ये शरीर नहीं है लेकिन मिरर में देखते हैं तो यही दिखता है, तो जो एक्चुअल मैं है उसको कौन से मिरर में देखे? क्योंकि ये जो विचार मन ईगो है, मतलब हम किसी को अपना कोई ना कोई रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो हम खुद को वैसे ही देखते हैं तो वैसे ही विचार आते हैं, तो वो एक मैं की थोड़ी झलक भी दिख जाएगी तो बाइफरकेशन।
देखो, ये जितने भी रिश्ते हैं ये हमने माने हैं, हमने माने हैं। माना है तो पत्नी है, माना है तो पति है, माने हैं तो बच्चे हैं। नहीं मानते हैं तो कई माएं बच्चों को छोड़ के भाग जाती, क्योंकि उन्हें बच्चों को माना ही नहीं। माना है तो फैमिली है, कई लोग फैमिली को छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं। तो ये सारा खेल मानने का है। हमने संसार को अपना मान लिया, इसलिए हम दुखी होते हैं। जिस दिन हमने राधा वृंदावन चंद्र को अपना मान लिया, और एक बात बताऊं, जब हम सफर करते हैं और हम देखते हैं कि जिसको हमारे साथ होना चाहिए वो हमारे साथ है, तो दूसरे भाग गए चिंता नहीं ना, ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको साथ होना चाहिए वो है। ऐसे अगर राधा वृंदावन चंद्र हमारे साथ हैं तो किसी ने हमें छोड़ भी दिया तो हमें क्या चिंता। इसलिए वृंदावन चंद्र के साथ दोस्ती करो पक्की, बाकी आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। आओ आओ तो जी आया नू, और जाओ तो मैनू किया। जाओ जाओ आओ आओ, दुनिया भले दिकारे मुझा, मालिक तू ना दिकार। वृंदावन चंद्र ये सब रूठ जाए, रूठ जाने दो, क्योंकि इनको मना मना के मैं थक गया, हुआ क्या? रिजल्ट तो वही धात के तीन पात, एक झाड़ आता है जिसके हर पत्ते में तीन पत्तियां होती है, इसलिए कहते धात के तीन पात, धात के तीन पात। तो आप इस दुनिया को खुश कर 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 के मर जाओ। इसीलिए संत कबीर ने कहा, कबीर के कुत्ता ना पाले, क्यों? रीझा पांव चाटे, खीजा पांव काटे। कुत्ता अगर आपसे खुश है तो आपके पांव को चाटेगा, और वही नाराज हो गया तो आपके पांव को काटेगा। अब खुश कैसे? उसको आप खिला रहे हो मोती, आ मोती, आ मोती, तो मोती पागल हो गया। लेकिन जिस दिन मोती को आपने जा मोती बोला, वो आपके पांव को काटेगा, इतना याद रखना। इसलिए बेहतर यही है कि रोज भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु दुनिया भले दिखारे तू नहीं, कृष्ण कढ़े मोसा किट्टे ना कीजिए, अब भाई तू प्लीज, ये सब चलेंगे। क्यों चलेंगे? कि देखो एक बात समझाओ, देर सवेर छोड़ने वाले तो है ही भाई, किसी ने आपको अभी छोड़ दिया, हो सकता है वही व्यक्ति आपको 20 साल के बाद छोड़ेगा, छोड़ेगा तो सही, क्योंकि कोई किसी के साथ रह नहीं पाता, मृत्यु छुड़वा देती है। तो किसी ने अभी छोड़ा, कोई आपको 20 साल के बाद छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा सब, लेकिन वृंदावन चंद्र आप मत छोड़ना, प्लीज आप मत छोड़ना, आप हमें पकड़े रखना। हम इधर उधर खिसकने की भी कोशिश कर रहे थे, तो जैसे मैंने माइक को पकड़ लिया, पकड़ लेना प्रभु, क्योंकि हम जीव हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, आप पकड़ लेना। बाकी इन्होंने छोड़ दिया, क्या हो गया? 10 साल के बाद छोड़ेगी, 20 साल के बाद? अब पूछो शकु माता को, पूछो भजन लाला दादा छोड़ के चले गए, अगर 10 साल पहले ना छोड़ते तो हो सकता 20 साल पहले छोड़ दे। इनसे पूछो, इनका हस्बैंड आज ही कह रही थी मुझे बद्रीनाथ जाना, लेकिन मेरा पति छोड़ के चला गया, अब मैं किसके साथ जाऊं? तो छोड़ के तो आज नहीं, बाद में भी जाएंगे। अब किसी का पिता छोड़ के चला गया होगा, किसी की माता छोड़ के चली गई, किसी को बचपन में छोड़ गई, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में, जाएगी तो सही। तो अभी छोड़ दिया या कभी छोड़ दिया कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रभु आप ना छोड़ना। आपने छोड़ दिया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए रोज सत्संग आओ, हरि कथा, हरि भजन, हरि दर्शन, मतलब हमारा संबंध कृष्ण से जुड़ा हुआ है, बाकियों का क्या भरोसा। और बाकी संसार बड़ा अटपटा है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक लड़की की लड़के के साथ सगाई हुई, भाई लड़की वाले खुश हुए, किस बात पे? कि लड़की वालों ने सगाई में डायमंड का सेट दिया पूरा, वाह बहुत प्यार करते, किससे? लड़की राज करेगी सगाई में ही, इसकी सास तो इसे बहुत प्यार करती, कहा नहीं मैं अपनी होने वाली बहू को डायमंड पहनाऊंगी, कितने खुश होते। फिर बीच में बर्थडे आया तो डायमंड की अंगूठी पहनाई बहू को, वाह भाई वाह, है कि नहीं? फिर शादी हुई तो इतना मोटा मंगलसूत्र, हार का सेट, और ये, और लड़की वालों ने भी लड़के को अंगूठी, लड़के की माँ को भी, लड़की की बहन को भी, बोली उसके जीजा को भी, यानी जो उनका उनकी ननंद का हस्बैंड है उसको भी दो, जो ऐनर बना है उसको भी दो। वाह क्या तो शादी हुई। है कि नहीं? लेकिन जब तलाक होती है एक एक चीज हिसाब से वापस लेते हैं। बोलो लेते हैं नहीं लेते? लेते नहीं लेते? असा को सोन खपे असो। जब तक हमारा सोना नहीं मिलेगा हम साइन तलाक पे नहीं करेंगे। अरे भाई तुमने तो दे दिया था, फिर वो तुमको नहीं दिया था, उस रिश्ते को दिया था और तुम खुश हो रहे थे मुझे दिया। वाह वही चरी, तुमको नहीं दिया था उस। सच बताओ, ए माता से पूछो हिसाब लेके गिनते हैं, भाई हमने 20 तोला दिया था वापस करो। बोलो है कि नहीं? अच्छा 20 लाख भी लेते हैं? हाँ शादी में खर्चा हुआ वो दो। अरे भाई हमने थोड़ी किया था, हमने कहा था 20 लाख करो। तो याद रखो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, ये आपको नहीं दिया जाता है, उस रिश्ते को दिया जाता है। जब तक वो रिश्ता है वो सोना वो चांदी वो डायमंड आपके पास रहेगा, जब वो रिश्ता खत्म हो गया तो सब वापस हिसाब कर करके लेंगे और कोई चीज मिस हुई तो उसका पैसा लेंगे। बोलो ये व्यवहार है कि नहीं भाई? है। और हम समझे किसको दिया? मुझे दिया। अरे तुमको थोड़ी दिया, उसने तो उस रिश्ते को दिया। तो जब तक रिश्ता तब तक फरिश्ता। क्या बोला? बोलो सब बच्चों बोलो, जब तक रिश्ता तब तक फरिश्ता। जिस दिन रिश्ता गया बन गया शैतान, फिर देखो उस कि कितनी बुराइयां होगी। हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा ऐसा कर दिया, हमारा वैसा कर दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने ऐसा कर दिया। इसलिए कहता हूं जब तक रिश्ता तब तक फरिश्ता। जिस दिन रिश्ता गया शैतान बन गया। इसलिए आप अगर किसी की नजरों में फरिश्ता हो इसलिए हो कि वो रिश्ता है। और फिर उसमें और मसाला डालते हैं। जब कोई डाइवोर्स होता है ना तो कभी कभी तो कुछ लोग हमें समझाते हैं ये भी लिखो ये भी। वो कहते हैं हमारे साथ हुआ ही, बोला लिखो नहीं तो डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो कुछ भी मसाला और लिखते थे। इसलिए आज समझ में बात आई, जब तक रिश्ता तब तक फरिश्ता। जिस दिन रिश्ता गया उस दिन शैतान बन गया। धन्यवाद। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश सुखी और स्वस्थ रखे और मैं दुआ करता हूं कि आप लोग एक दूसरे की नजर में हमेशा फरिश्ते बने रहो, नहीं तो शैतान तो है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।